आपको याद होगा जो परमेश्वर के वचन में हमने इस बात को सीखा था कि किस रीति से परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जब कलीसिया की वाचा को मानते हैं तो हम कैसे एक दूसरे के साथ सहभागिता करेंगे और किस प्रकार से एक दूसरे के जीवन का निर्माण करेंगे और आत्मा की एकता के लिए प्रार्थना करेंगे, कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारे के प्रेम में समर्पित होंगे। इन सारी बातों को हमने देखा था और दूसरी वाचा को भी हमने देखा था जिसमें लगभग 6-7 बातें थी कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, निर्माण करेंगे, चेतावनी देंगे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ेंगे। ये जरूरी है जब हम इन वाचाओं को लेते हैं, पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कलीसिया जो है परमेश्वर का परिवार है और ये बहुत ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जुड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम संसार में जन्म रहते हैं, संसार में हमारा बहुत रिश्तेदार होते हैं, बहुत संबंधित होते हैं, लेकिन उस संसार में लेकर के हम चाहे किसी भी खानदान में पैदा हों, अगर हमने मसीह को नहीं जाना व्यक्तिगत से, मैं पिछली बार बता रहा था, मैंने कुछ अपनी साक्षी भी दी थी पिछली बार बताया था कि डॉक्टर विली ग्राहम कहते हैं कि अगर मोटर कार गैरेज में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो मोटर कार नहीं बन जाती, यदि कोई डॉक्टर घर में पैदा हो जाए तो डॉक्टर नहीं बन जाता। एक प्रक्रिया है जिसमें से होकर उसको जाना पड़ता है और हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के परिवार में शामिल होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम अपने जीवन को देखें कि हम एक पापी हैं और बिना पाप के पश्चाताप के, बिना पापों के पश्चाताप के हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन हम धन्यवाद हैं, एक और मनुष्य पापी है, दूसरी ओर परमेश्वर का प्रेम है और वो परमेश्वर का प्रेम यह है कि परमेश्वर ने अपने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि मनुष्य बनकर स्वयं इस पृथ्वी पर आ गया, स्वयं पृथ्वी पर आ गया। और मैं कई बार कुछ कहानी को या ऐसी बातों को शेयर करता हूं जिससे हम समझ सकें क्या जरूरत थी मनुष्य बनने की परमेश्वर के लिए। एक बार एक बालक था और वो बालक चला जा रहा था और उसने देखा कि एक नाली है, पानी उस बह रहा है और एक चींटियों की लाइन है और चींटियां उधर चलती चली जा रही है। और उस बालक ने देखा और बालक परेशान हो गया, घबरा गया, बेचैन हो गया। वो सोचने कहने लगा, अरे ये चींटियां जा रही हैं और ये पानी में जाएंगी, अभी बह जाएंगी, मर जाएंगी, इनको बचाना है। वो चिल्लाने लगा, हे चींटियों सुनो, रुक जाओ, उधर मत जाओ, पानी में जाओ, तुम बह जाओगे, मर जाओगे। और वो और जोर से चिल्ला रहा, उनको रोकना चाह रहा, लेकिन चींटी चलती जा रही और उसको बहुत व्याकुलता, परेशान हो रही है, अरे ये चींटियां मर जाएंगी, पानी बह जाएंगी, इनको कैसे रोका जाए। तब एक बाबा चला रहा था और जब उधर से चले आ रहे थे तो उसने देखा ये लड़का, बालक जो है, छोटा लड़का, बहुत जोर से चिल्ला रहा है। इस लड़के ने भी उनको देखा, बुजुर्ग को देखा, एकदम से उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। ये एकदम चिल्ला चिल्ला कहने लगा कि इनको रोकिए बाबा, इनको रोकिए, ये चींटियां नाली में जा रही हैं, पानी में जा रही, मर जाएंगे। तब बाबा ने धीरे से कहा, बेटा अगर तुम चाहते हो कि चींटी तुम्हारी आवाज सुने, तुम्हारी आवाज पहचाने, तो तुम्हें चींटी बनना होगा। मेरे प्रिय, सच है, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर को पहचाने और उसकी आवाज को जाने और इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आ गया ताकि मैं और आप उसको पहचान सके, उसको सुन सके। और आज से 2020 साल पहले लगभग प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए ताकि जो पापी मनुष्य है वो उसकी वाणी को समझ सके, उसकी आवाज को पहचान सके और उसके उस उद्धार के कार्य को समझ सके और उस पर विश्वास करने द्वारा जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए लहू को बहाया, कीमत चुकाई, उस पर विश्वास करने द्वारा पापों से बच करके एक नए जीवन को प्राप्त करें, नए जीवन को प्राप्त करें। तो सच है, प्रत्येक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मन को फिराया है, जब हम विश्वास करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो दूसरा कदम होता है कि हम बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा एक प्रकार की साक्षी। आज हमने पढ़ा कि बपतिस्मा हमें मुक्ति नहीं दिलाता, बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं देता, लेकिन बपतिस्मा जो है हम इस बात की साक्षी देते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अब मैं उसके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूं और मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। अगर ये विश्वास नहीं तो मैं बपतिस्मा नहीं, बिना उद्धारकर्ता, बिना उद्धार पाए बिना मुक्ति पाए, बिना उस सुधार के अनुभव पाए, बपतिस्मा लेना वो अर्थहीन है। और जब आपने बपतिस्मा ले लिया, तो बपतिस्मा लेने बाद अब हम प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जुड़ते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं। पिछली बार हमने देखा था पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 13 वर्ष से कि किस रीति से एक विश्वव्यापी कलीसिया है, विश्वव्यापी कलीसिया में सब सम्मिलित होते हैं छोटी छोटी कलीसिया में, लेकिन स्थानीय कलीसिया जो परिवार है, स्थानीय आत्मिक परिवार है, वो मेरा और आपका आत्मिक घर है। अब बपतिस्मा बाद मुझे उस आत्मिक घर में जुड़ना है, उसका सदस्य बनना है, उसकी सहभागिता में आना है, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना है। अब मैं एक षड्यात्री की तरह नहीं हूं, लेकिन मैं अब एक परिवार में शामिल हो गया हूं, और उस परिवार में शामिल होकर के तब मैं उस वाचा को लेता हूं कि अब मैं इस परिवार में जुड़कर मैं क्या करूंगा, कैसे मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, अब मेरा विश्वास के साथ कैसा संबंध है, क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, क्या मेरा उत्तरदायित्व है। जब हम एक परिवार में होते हैं और उस परिवार में रहते हुए हमारे संबंध होता है, तब हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सच है कि जब हम स्थापित होते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, और ये हर एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो बपतिस्मा लेकर किसी भी कलीसिया में, जो स्थानीय कलीसिया है जहां वो जाता है, जो अपना घर है, और उसमें वो जुड़ करके उसके साथ रहकर आगे बढ़े, तब एक संबंध है जो कलीसिया का उसके साथ और उसका कलीसिया साथ, और तब उसके बाद वो कलीसिया की जिम्मेदारी होती है आत्मिक लालन पालन के लिए। तभी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे चिंता करते हैं, एक दूसरे को आत्मिक शिक्षा देते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं, और एक दूसरे साथ मिलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन बार बार एक दूसरे के साथ वर्णन करता है। सो पिछली बार हमने दो वाचाओं को देखा था जो हम लेते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगर समय रहा 3 और 4 को देखेंगे, लेकिन 3 तीसरी वाचा। सो ये है करीब 4 या 5 मुख्य बातें इसमें जो हम करने का निश्चय लेते हैं, 4 या 5, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है जो परिवार के संबंध में है, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को संभालेंगे, शिक्षा देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, यह है जवान बच्चों के संबंध में है। दूसरा, किस प्रकार से हम एक सिद्ध और प्रेम का आदर्श द्वारा दूसरों के लिए इस बात से प्रतिशील रहेंगे कि दूसरों का उद्धार हो सके, चाहे वो हमारे परिवार में है, चाहे हमारे संबंधी है, चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं। तीसरा है कि हम एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी होंगे। चौथा, हम एक दूसरे का भार उठाएंगे। पांचवा है कि हम संसार में सावधानी से जीवन व्यतीत करते हुए अभक्ति तथा संसार की अभिलाषाओं को नकारेंगे। ये 5-6 बातें मुख्य हैं जो इस पे हैं कि ये हम करने का निर्णय लें। तो जब हम खड़े होकर साथ मिलकर के इन वाचाओं को दोहराते हैं, स्मरण करते हैं, एक समय था जब हमने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के साथ साथ कलीसिया में हमने उस वाचा को दोहराया और हमने कलीसिया सदस्यता को प्राप्त किया और इस बात की साक्षी दी, अब हम इस कलीसिया में जुड़ गए। अगर आपने यहाँ कर खड़े होकर किया है तो आपने इस बात की साक्षी दी है कि अब मैं सियोन कलीसिया के साथ जुड़ गई हूँ और जुड़ गया हूँ, अब ये मेरा आत्मिक परिवार है, अब ये मेरा आत्मिक परिवार है। और तब आप एक दूसरे साथ, कलीसिया के सेवकों के साथ, कलीसिया के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, हम और अधिक संबंधों को हम दृढ़ करते चले आते हैं। सो ये है परमेश्वर। अब आज थोड़ा सा हम इस वाचक पर विचार करना चाहेंगे कि किस रीति से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश कर सके। आज विशेष रीति से जो वाचा है वो पति पत्नियों के या परिवार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रियो, ये सच है, जितना अधिक आपका परिवार आत्मिक रीति दृढ़ होगा, उतना अधिक आप जिस कलीसिया में हैं वो कलीसिया दृढ़ होगी। जितना अधिक आपका आत्मिक परिवार और जितना अधिक आपका आत्मिक आपका परिवार उलझनों में रहेगा, और वो उलझने आप विश्वासियों के बीच में कलीसिया में आएंगे और आप उलझनों में रहते जाएंगे। इसलिए एक जिम्मेदारी है व्यक्तिगत रीति से कि हमारे परिवार मसीह यीशु में और अधिक दृढ़ हो सके, हमारे परिवार मसीह यीशु में और अधिक दृढ़ हो सके। तो एक विवाह था और हम मुझे उसको देना था गांव में, और हम स्मरण कर रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन में 3 बार प्रभु परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पौलुस के द्वारा एक बात लिखी गई है, और ये लिखी गई है पुरुष अपने सब कुछ को छोड़ करके स्त्री से मिला रहेगा। तीनों परमेश्वर इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं और पौलुस इस बात को। लेकिन मैं बता रहा था वहां कि छोड़ने का मतलब त्यागना नहीं है, छोड़ने का मतलब त्यागना नहीं है। अब पति पत्नी साथ मिलकर के एक नए परिवार की का निर्माण कर रहे हैं, उसका उसको बना रहे हैं। अब उनको साथ मिलकर चलने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका परिवार बढ़ेगा। अब वो 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, और परमेश्वर उनको बढ़ाता चला जाएगा। परिवार पति पत्नी और बच्चे होते हैं, परिवार पति पत्नी और बच्चे होते हैं, ठीक है। जब बच्चों की शादी होती थी वो अपना परिवार, हमारे पास प्रभु का धन्यवाद हमारे पास 3 बच्चे हैं, अब हमारी बेटी है, ये आप जानते हैं। अब उसने अपना परिवार बनाया है, उनका परिवार है, हम जरूर हम उनके सहभागी हैं, लेकिन उनका परिवार वो दोनों और उनके बच्चे हमेशा, चाचा चाची, मामा मामा, काका काकी, सब परिवार में नहीं आते, वो संबंधी होते हैं, वो संबंधी होते। और जब वो चाचा चाची, काका मामा, दादा दादी सब घेर के चलते हैं तो वहां पर परिवार गड़बड़ होता है। अब मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको अलग करें, नहीं नहीं, हम नाता नहीं छोड़ते, लेकिन लेकिन बुद्धिमानता से आगे बढ़ते हैं। पर सबसे बड़ी बात जो है, अब जिम्मेदारी माता पिता की बच्चों के ऊपर है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और माता पिता की जिम्मेदारी अगर बच्चों के ऊपर है, इफिसियों 6 में पौलुस कहता है, बार बार परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में सिखाया, अगर आप किसी भी स्थल में जाएंगे तो आपको हर स्थान पर पौलुस से इस बात का, इफिसियों का 6:4 पर, पिताओ अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। जिस प्रकार से कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, हेड प्रभु यीशु मसीह, ठीक उसी प्रकार से एक परिवार का हेड जो है, मुखिया जो है, वो पति होता है, पुरुष होता है। अब वो मतलब ये नहीं कि वो इस प्रकार का हेड बन जाए कि सुबह शाम मैं हेड हूं, तू क्या उठ और बैठ और खड़ी हो और ये कर, वो नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, परमेश्वर ने, किसी प्रभु के सेवक ने कहा, परमेश्वर ने स्त्री को सिर सर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो सर पर प्रभुता करे, परमेश्वर ने उसको पांव की हड्डी से नहीं बनाया कि वो पांव के नीचे रहे, पुरुष के पांव के नीचे रहे, सर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो पुरुष पर प्रभुता करे, पांव की हड्डी से नहीं बनाया कि वो पांव के पुरुष के पांव के नीचे रहे, लेकिन उसने बगल की पसली से बनाया ताकि पत्नी पुरुष के साथ साथ रहे। समानता है, जरूर अधीनता है, प्रेम है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कुछ बातों को, लेकिन यहां पर कह रहा है माता पिता के लिए कि तुम उनको बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। अगर बच्चों का आप सही शिक्षा में लालन पालन करना चाह रहे हैं, अगर आप बच्चों को सही रीति से प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि माता पिता का दोनों का संबंध, पति पत्नी का दोनों का संबंध एक अच्छा मजबूत होना है। पत्नी को पति को समझना है और पति को पत्नी को समझना है, समझ के रहिए। परमेश्वर के वचन में शिक्षा है, ध्यान दीजिए। हम लोग कभी कभी कुछ बातों को सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर एक परिवार को चाहता है। आपकी परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी है और एक ऐसे परिवारों पर लगी है जो परिवार परमेश्वर की दृष्टि में सही रीति से वचन के अनुसार आगे जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्या मतलब है? जब ये तो पहली बात उनका आपस में संबंध, अगर पत्नी को लिखा हुआ है कि पत्नी को पुरुष के पति के अधीनता में रहना है तो उसको अधीनता को स्वीकार करना है। अब अधीनता का मतलब यह नहीं कि वो बिल्कुल दब के जीवन रहे, लेकिन अधीनता का मतलब है कि उसका सबमिशन जो है वो अपने पति के सामने अपने आप को हमेशा समर्पित करती है प्रेम के साथ। लेकिन उसके साथ साथ पतियों को ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पत्नी को कम इंस्ट्रक्शन है, पति को ज्यादा इंस्ट्रक्शन दिए गए। अगर इस समय पढ़े आप, चाहे आप क्या नाम से इफिसियों में जाएं, चाहे आप आगे चल करके पहले पत्रस में जाएं, उसके 3 अध्याय में, और वहां पर लिखा है कि पतियों का सम्मान करो, पत्नियों का, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान करो, हे पतियों अपने अपनी पत्नी को से प्रेम करो। पत्नी के लिए लिखा है पुरुष की अधीनता स्वीकार करो, लेकिन पुरुषों के लिखा है अपनी पत्नी से अपने समान, अपने जैसे तुम अपने देश से प्रेम करते हो वैसे प्रेम करो। जब मीटिंग होती थी पास्टरों को, प्रभु की दया से मैंने बहुत लोगों से सिखाया जो प्रभु की सेवा में रहते हैं, आजकल फील्ड में जाते रहते हैं, बिचारी पत्नी घर में बैठी रहती है, हम क्या करें, सेवा करें। सेवा का नाम आज इतना बुरा नहीं है, सेवा करना अच्छी बात है, प्रभु बुलाता है, प्रभु धन्यवाद हो। अगर कोई कहता है कि प्रभु को मुझे सेवक के लिए बुला रहा है, प्रभु ने एक दिन मुझे बुलाया मैं धन्यवाद था, प्रभु ने एक दिन राजशेखर को बुलाया प्रभु धन्यवाद हो, और भी कोई बहुत लोग हैं जिनके लिए हम याद कर सकते हैं, ठीक है अच्छा है, लेकिन सेवा के लिए तैयारी चाहिए, समर्पण चाहिए। जब हम सेवा की बात करते हैं तो कई बार हम परिवार को इग्नोर कर देते हैं, परिवार को हम इग्नोर कर देते हैं। मेरा हमेशा इस बात पे जोर रहता है कि हम चाहे कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो लेकिन परिवार को इग्नोर नहीं करना है, परिवार का ध्यान रखना है, पति को पत्नी का ध्यान रखना है, पत्नी को पति का ध्यान। कई बार पति चलेगा विजिटिंग के लिए, पत्नी घर में बैठी हुई है और बैठकर इंतजार कर रही है, और पति आ रहे 9 बजे, वहां तो उनको दावत मिल गई, खा लिया, पी लिया, चाय मिल गई, ये मिल गई, रास्ते में कोई मिल गया उनके साथ मिला। जब घर में आए, जहां पत्नी ने कहा कि आप लेट हो गए, क्यों हो गए, देर हो गई, मैं आपकी इंतजार कर रही हूं, तुझे मालूम नहीं मैं सेवा के लिए गया था, प्रवासी तक क्या कर रहे थे, वो बेचारी भूखी बैठी है, लेकिन पति क्या कर, गंभीर होना है। संबंध दूसरी ओर, पति बेचारा ड्यूटी से चला रहा है, थका मांदा आ रहा है, पत्नी एक बात ये नहीं पूछती है कि आप थक गए हैं, आपको क्या है, एक पानी पी लीजिए, कुछ कर लीजिए। एक परिवार को मैं जानता हूं, बेचारे वो दिन भर अपने घर में रहती, दिन भर घर में रहती, सही बात बता रहा हूं, और जैसे ही पति 5 बजे ड्यूटी से पहुंचता है कहते हैं बाबू जरा चाय बना लो, दिन भर थक गए, ना उनके पास बच्चे ना कच्चे ना कुछ, दिन भर बैठी हुई अकेले, और क्या चाय बना लो कि मैं थक गई। वो बेचारा थका मांदा दिन से आ रहा है ड्यूटी से, क्या क्या उसका स्ट्रगल रहा है, बजाय उसको पूछे। और मैं इसीलिए बहनों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ बहनों को बात कर, कि जब आपके पति बाहर से आते हैं, आप अगर बच्चे ने आपको परेशान किया, तुरंत उनकी शिकायत मत करिए, थोड़ा सांस लेने दीजिए, धीरे से बताइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। आपको पत्नी को पति की जरूरत है, पति को पत्नी की जरूरत है, और आप एक दूसरे के संबंध जितने मजबूत होंगे, जितनी समझ होगी, साथ मिलकर जितना प्रार्थना करना है, साथ मिलकर वचन को पढ़ना है, साथ मिलकर एक दूसरे को उत्साहित करना है, उसके द्वारा आपके बच्चे प्रशिक्षित होंगे। बच्चे बोलने के द्वारा कम प्रशिक्षित होते हैं, आपको देखने द्वारा ज्यादा होंगे, और तब फिर धीरे से आप बच्चों को लेकर चल सकते हैं। और मेरे प्रियो, बच्चों को बचपन से वो शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो अपने बुढ़ापे में ना छूटने पाए। नर्वस निकाली व्यवस्था विरोध, उसका 6 अध्याय। हे इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक परमेश्वर, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। आज मैं जिन वचनों को की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू उनको यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना। तू यत्नपूर्वक उनको क्या करना, अपने बाल बच्चों को सिखाना। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का वचन को सिखाए। अब आने वाले दिनों में यहाँ पर संडे स्कूल शुरू करने की तैयारी में हम लोग, जैसे संडे स्कूल शुरू होता है आपके बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कितना अच्छा हो जब घर में वो आप जाते हैं, आप उनसे पूछे बेटा तुमने क्या सीखा आज, बेटी तुमने आप क्या सीखा आज, क्या तुम्हें बताया गया क्या, और तब उसके बाद आप उनके सुनकर उनको सहायता कर सके, उनको और स्मरण करा सके। तो वो क्या कह रहा है, और वो कह रहा है तू उनको यत्न पूर्वक प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है, ढिलाई नहीं करनी है। और तब वो कह रहा है तथा अपने घर में बैठे मार पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। आप कितनी बार दिन में बच्चों से बात करते समय किसी ना किसी बहाने से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं? जब आप खुद ही नहीं जानते, आप खुद ही बाइबल नहीं पढ़ते, आप खुद ही प्रार्थना नहीं करते, तो बच्चों को क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे? और मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन कहता है तू यत्न करना, और यही बार बार कह रहा है, उठते बैठते चलते फिरते उनकी चर्चा क्या करना, उनकी चर्चा क्या करना। मैं बार बार इस बात को भूलता हूं, अगर आप अपने बच्चों को बाइबल के निकटता में लाना चाहते हैं, वचन के, डीएल मूडी ने यही कहा है, वो मेरे आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है, या तो पाप आपको परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा या परमेश्वर का वचन आपको पाप से अलग रखेगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभुता पाएगा, तो धीरे धीरे आपका जीवन पाप से अलग होता चला जाएगा, आपके बच्चों का जीवन पाप से अलग हो जाएगा, और तब वो संसार में देखने पाएंगे कि हम कौन है, हम क्या है। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष आपके लिए, बच्चों के लिए, ये नहीं कि आपके बच्चे बहुत बड़े बन जाएं, बहुत पैसे कमाएं, सबसे बड़ी आशीष कि बचपन से आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, छोटेपन से आपके बच्चे। इसलिए जब आप उपवास करें तो आप रो रो के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चे किसी रीति खोने ना पाए, लेकिन आपको जाने पाए, आपको पहचाने पाए और आपके पीछे चलने। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके साथ कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप उनको छोटी छोटी कहानी सुना सकते हैं, आप उनको परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, आप अपनी प्रार्थना की वेदी घर में बना करके उन बच्चों को सम्मिलित कर सकते हैं, कई तरीके। लेकिन आपके ध्यान में यह है कि हमारा परिवार मसीह परिवार है, हम दोनों पति पत्नी प्रभु में हैं, और प्रभु में होने के नाते हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हुए इन बच्चों को आप में बढ़ाएंगे। अगर मेरे प्रियो, मैं फिर से कह रहा हूं, सब कुछ प्राप्त करे, परमेश्वर वचन कहता है यह मनुष्य संसार की सब सारी वस्तु प्राप्त करे और उसे अपने आप प्राणों हानि उठाए तो क्या लाभ। इसलिए धन्य है परिवार जहां पर परिवार की वेदी है। हाँ, उसको आप एक घंटे डेढ़ घंटे वो मत मनाइए, आराधना मत मनाइए, समय के अनुसार उसके भी तरीके सीखने के हैं। इसीलिए नीति वचन क्या लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 6 पद, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है और वो फिर क्या होगा, बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा। और माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे और आप, केवल परमेश्वर ने आशीष नहीं दी है, आशीष के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो उसके साथ दो चीज और जोड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी है और जवाबदेही है, ये दो चीज और जुड़ाते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, कहीं भी, जब एक जवान बेटा या बेटी अपने विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं और जब उनका विवाह होता है, ठीक है, परमेश्वर ने आशीष दी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे को प्रार्थना सुनी, आशीष दी, लेकिन केवल आशीष नहीं दी, अब परमेश्वर ने एक दूसरे के प्रति और अधिक जवाबदेही बना दिया और अधिक जिम्मेदारी दे दी, कहीं भी आप जाइए। और इसलिए हमें देखना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को संभालना है। So, माता पिता ना केवल ये, तब वो कहता है माता पिता का आदर्श, माता पिता का आदर्श कैसा आदर्श, किस रीति से हम कलीसिया में जाते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम झूठ से अलग रहते हैं, किस प्रकार से आपके मुंह के शब्द क्या हैं, किस प्रकार के निकलते हैं। आप जब कलीसिया में आते हैं बच्चों को, अरे मम्मी पापा ये बॉक्स दिखाई देता, क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं, चंदा डालते हैं, चंदा नहीं डालते, अभी अगले हफ्ते उस पर देखें। क्या बचपन से आप उनको देना सिखा रहे हैं, क्या बचपन से आप उनको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं? माता पिता क्या आदर्श है आपके परिवार में, लोगों के बीच में, पड़ोस में, कलीसिया में, आपके रिश्तेदारों में, रिश्तेदार क्या देखते हैं आपको, जो जानते हैं कि आप प्रभु में अलग है बिल्कुल। कोई भी मेरे प्रियो, आप ये मत कहिए कि केवल हिंदू परिवार से आए हुए लोग उन्हीं को कट्टाई सहना, सबको कट्टाई सहना पड़ती है। जहां भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी खड़ा हो, चाहे किसी पृष्ठभूमि से हो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। मैं प्रभु धन्यवाद हूं, मैं कहता हूं मैंने बहुत कट्टाइयों को सहा है। जब मैं प्रभु में आया उसके बाद किस तरीके से घर वालों ने कैसे करा, जो भी थे मेरे हर एक को देखा मैंने। जब आप अपने आप को इस संसार से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे संसार से, और प्रभु के लिए जीना सीखेंगे, और अपने बच्चों को भी प्रभु में जीना सिखाएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आपको आएंगी, लेकिन प्रभु आपके पांव को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा और आपके खानदान के लोग समझ जाएंगे ये सच में कौन है। क्यों? आपका आदर्श उनके सामने, आपका आदर्श अपने बच्चों के सामने, आपका आदर्श अपने पड़ोसियों के सामने, आपका आदर्श अपने ऑफिस के ऑफिसर के सामने, आपका आदर्श। क्या हमारे ऑफिस के लोग, अरे तो टाइम से ड्यूटी इसकी होती है, इतनी देर में आता है और जल्दी चला जाता है अपने काम को। यहां पर कुछ बच्चे हमारे जाते थे पढ़ने के लिए, और दो जनों के बारे में बात करते थे क्रिश्चियन कॉलेज में, एक प्रोफेसर थे उनके बारे में उतनी तारीफ करते थे, वो चाहे दो जनों टाइम से आएंगे पढ़ाएंगे अपनी मेहनत करेंगे सब कुछ करेंगे, उनको बच्चे बहुत पसंद करते थे। दूसरे प्रोफेसर थे वो चर्च चलाते थे, मिनिस्ट्री में इतने थे, वहां से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कम स्कूल में आते, क्या करें सेवा में, ऐसी सेवा परमिशन इंग्लैंड। जो प्रायोरिटी तुम्हारी, प्राथमिकता तुम्हारी है, उसको तुम कैसे निभा रहे हो, इसको समझना हमें। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, मैं बार बोलता हूं, मसीह जीवन केवल खोपड़ी में कुछ ज्ञान भरने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक व्यवहारिक जीवन है, सत्य निष्ठा से चलने वाले जीवन है, सच्चाई और खराई से चलने वाले जीवन है। क्यों? एक दिन हम, मुझे और आपको परमेश्वर सामने खड़ा होना पड़ेगा, न्याय होगा, न्याय देना पड़ेगा, हम टल नहीं सकते, चाहे हम प्रभु को जाने या ना जाने। और अगर हमने प्रभु को जान लिया और प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें और अधिक गंभीरता से जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है कि किस प्रकार से हमें अपने आदर्श को रखना है, वो कहता है कि हम एक आदर्शपूर्ण जीवन परिवार एवं मित्रों में कि उद्धार के बारे में सोच सके, ये चिंता हमारी, ये चाहना हो, एक दूसरे के साथ दुख सुख में सहभागी होना। पिछली बार भी कुछ हमने इस बात को देखा था कि कैसे हम एक दूसरे के साथ दुख सुख में सहभागी होते हैं। कलीसिया परिवार है, अगर कोई बीमार है किस प्रकार से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, शायद विजिट कर सकते हैं, शायद उसके लिए खाना दे सकते हैं, कुछ आस्था पूरा करते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमारे चर्च में प्रभु धन्यवाद बहुत सारी बहनें हैं यहाँ जो स्टाफ में है, उन्होंने पिछले दिनों में एक भाई की मदद करी, अच्छा है, ये जरूरी है। जैसे उनसे कहा, नहीं नहीं ठीक है भेज दीजिए, उनके पिताजी बीमार हैं के लिए किसान है। जहां कहीं प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, हम कहीं ना कहीं अपने समय के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने सलाहों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपना कुछ खर्च करने द्वारा एक दूसरे के संभागी हो सके, एक दूसरे की देखभाल कर सके, एक दूसरे की चिंता कर सके, एक दूसरे का भार उठाओ। अब इसको समझना है जरूर, गलतियों उसके छठे अध्याय में परमेश्वर ने दो बातें कही हैं, एक दूसरे का भार उठाओ। अरे बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, तो आपको तो मेरा भार उठाना चाहिए, तो सही बात है, मुझे उठाना चाहिए, मुझे बिल्कुल उठाना चाहिए, तो बाइबल आपके लिए भी तो है, तो आपको उठाना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या लिख कहती है, गलतियों 6 अध्याय उसका 2 पद, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। फिर उसके बाद 5 पद में लगा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। दोनों है, हमें एक दूसरे का भार भी उठाना है और हमें अपना भार स्वयं भी उठाना है, इसको समझना है हमें, इसको हमें समझना है। अगर मेरे को 2000 रुपए मिलते हैं तो मैं हमेशा अपेक्षा ना करूं 2000 में ये भाई मुझे 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 10000 रुपए दे दे, तब मेरा काम चलेगा, नहीं। लिखा है अगर 2000 में है तो 2000 में मुझे अपने जीवन को इस तरह से चलाना है कि मैं कर्जदार ना बनूं, उसमें मैंने अपने मैनेज करूं। हाँ जरूर विश्वासी रहते हैं, एक दूसरे की हम चिंता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे कई तरह से मदद करते हैं, लेकिन जो मेरा उत्तरदायित्व मेरा जिम्मेदारी है मुझे उसको पूरा करना है। और कई बार लोग ऐसे नहीं करते। परमेश्वर के वचन को हम मुट्ठी बंद करके नहीं समझ सकते, परमेश्वर के वचन को हमको फैल के अपनी आंखों को खोल कर समझना है और तब व्यवहारिक जीवन में लागू होता है। सो ना केवल हमें आदर्श जीवन व्यतीत करना है लेकिन एक दूसरे के बाहर उठाना है। तब उसके बाद आगे चल के वो कहता है, संसार में सावधानी से जीवन व्यतीत करना, अभक्ति तथा संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को अलग रखना। परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई। जो मसीह में, दूसरा क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। सच है, परमेश्वर ने हमें एक नया बनाया है, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि दी है, परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया जो अद्भुत जीवन है। और अब क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मेहरबान से देखिए तीतुस का 2 अध्याय 12 और 13 पद, 12 और 13 पद, वो कहता है वो हमें ये सिखाता है हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके, इनकार करना हमें, उनको हमें मना करना है। कौन सी सांसारिक अभिलाषाएं हैं जो मुझे जकड़े रहती हैं, सांसारिक अभिलाषा जो मुझे पाप में धकेलती है, जो मुझे परमेश्वर से दूर करती है, जो मुझे परमेश्वर की आराधना से दूर करती है, वो सारी चीज मुझे उसको देखना परखना समझना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, समझ मांगनी है और परमेश्वर के वचन से तुलना करना है कि ये चीजें जो है, चाहे वो मार्ग हो सकता है, चाहे मेरे जीवन के निर्णय हो सकते हैं, चाहे मेरे जीवन की इच्छाएं हो सकती हैं, चाहे मेरे जीवन के कार्य हो सकते हैं, चाहे मेरे जीवन कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं गुप्त में कोई काम करता हूं, उसको मुझे देखना है। कोई कहता है अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करके इस युग में संयम धार्मिकता और भक्ति से जीवन व्यतीत करे। तब वो कहता है उस धन आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करते की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। ये दो काम करने, हमें अपने आप को इस संसार की अभक्ति से अलग करना है। जो परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर के साथ होना, किस रीति से चाहे मैं कहीं रहूं, बहुत सारे मेरे जीवन में प्रभु ने अनुभव दिए हैं, प्रभु ने सिखाया है, जब मैं विचार कर लेता हूं तो वो सारी चीजें मेरे को धीरे धीरे मेरे सामने आने लगती है, बहुत सारे। पर परमेश्वर का धन्यवाद, आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे ऐसे अनुभव दिए होंगे जहां आप बहुत आसानी से समझौता कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने आपको इस योग बनाया कि आप दृढ़ता से कह सकें कि हम इस चीज में अपने हाथ को नहीं डालते, अपने आप को आपने अलग किया, अलग किया। और यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। एक स्थल और पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 14 और 15 पद, यहां इस तरह से लिखा है, आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय कि पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण ना करो। दो चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय, जब हम पुराने जीवन में व्यतीत करते थे, हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना करना बोलना चालना वो अज्ञानता में था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर के सच्चाइयों को नहीं जानते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, हम अंकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम अंकार में मार्ग में आगे बढ़ रहे थे और हम प्रभु को नहीं जानते थे, वो हम अज्ञानता में थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक समय के लिए जब प्रभु ने मेरी और आपकी आंखों को खोल दिया, मुझे दर्शा दिया कि संस्कार की अंकार की चीजें क्या है, पाप क्या है, और मुझे और आपको पाप से अलग कर दिया परमेश्वर ने, अब अपनी संतान बना लिया। वो कह रहा है कि उन सारी चीजों को जो उस समय थी उनके अनुसार आचरण न करो, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। अब हम किसके फॉलोअर हैं, हम किसके अनुयायी हैं, हमें किसने बुलाया है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, जिसने मेरे और आपके लिए स्मृति पर रहकर पवित्र जीवन व्यतीत किया, उसके कार्यों में, उसके संदेशों में, उसकी शिक्षाओं में, उसकी बातचीतों में, उसके सब कुछ में, उसकी सेवा में, सारी चीज में हम उस आचरण को बाते हैं जो पवित्रता का आचरण है, प्रेम का आचरण है, धार्मिकता का आचरण है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अद्भुत है और परमेश्वर ने प्रेम के कारण मुझे और आपको पवित्र बना दिया है। अब वो कहता है कि परंतु तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है। सो परमेश्वर की इच्छा है, सो जब हम वाचा की बात करते हैं तो ये वाचा हमें सिखाती है। और हमने पहला क्रोनिकल्स का 13 अध्याय प्रेम के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें, प्रेम ये नहीं करता, प्रेम ये नहीं करता, प्रेम नहीं करता, प्रेम ये करता है, प्रेम ये करता, सूची बना सकते हैं। लेकिन सबसे आगे लिखा है विश्वास, प्रेम और आशा, ये दृढ़ है। पर प्रेम को भी हमें सच्चाई के साथ समझना है, प्रभु में परमेश्वर से प्रेम करते हुए। इफिसियों में अगर 4 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां मालूम चलेगा, 4 अध्याय 15 पद कि किस तरीके वो परमेश्वर को वचन कह रहा है। वो चीजें जो प्रभु में पाई जाती हैं उसको हम परमेश्वर में लेकर के प्रेम, प्रेम हर एक से हम नहीं कर सकते और हर एक के साथ अलग है। संसार के लोगों से प्रेम हम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, और पड़ोसी से प्रेम करने के कारण जब उनकी स्थिति को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, निर्बलताओं को देखते हैं, गरीबों को देखते हैं, जो कुछ हमसे मन पड़ता है हम करते हैं उनके लिए। लेकिन वो कलीसिया में नहीं है, वो अन्य जाति है, अभी तक प्रभु को उन्होंने नहीं आना। कुछ मौका मिला, समय पर समय कुछ उनसे बातचीत हुई, जो कुछ भी हुआ उन्होंने देखा सुना सब कुछ है। लेकिन वो प्रेम जो हम कलीसिया के लोगों से कर सकते हैं, आपस में एक परिवार से कर सकते, हम दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, करते हैं संसार में, लेकिन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में। और प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज में समझौता करें। प्रेम में चेतावनी भी है, प्रेम में शिक्षा भी है, प्रेम में ताड़ना भी है, प्रेम में अनुशासन भी है, ये भी हमें समझना है। अगर किसी को चेतावनी दी जाती मुझे ऐसा कह दिया और इसलिए वो मुझसे प्रेम नहीं करते, नहीं, गलत। हमें समझना इस बात को, परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम वाचा की बात करते हैं तो केवल शब्दों का, ये शब्दों को दोहराना नहीं है, लेकिन इन शब्दों में हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी समझ होनी चाहिए, और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हम कैसे और अधिक मजबूत, दृढ़ इस परिवार के, इस कलीसिया के अंग बन करके दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। जो बात नहीं समझ में आती उसको आपस में कैसे विचार विमर्श करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ये कदम हमारा होना है। जो चीज हमारी समझ से परे है या कोई संदेह है, कोई और चीज है, हम आ करके उन बातों का स्पष्टीकरण करते हैं। परिवार में ऐसे ही होता है, तभी परिवारों मिलकर चलता है, आगे बढ़ता है। और इसलिए जो वाचा सिखाती है, परमेश्वर का वचन प्रधान है, परमेश्वर की शिक्षाएं प्रधान है, और जब हम उसको अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी भावना को उसकी अधीनता में लेकर चलते हैं, तब हमारी सोच बदलती है, हमारे निर्णय बदलते हैं, हमारे कार्य बदलते हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, और वो हमारे जीवन को दर्शन, और वो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनती है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण, एक दूसरे के आनंद का कारण बनती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात कहता है। तो बहुत जरूरी है, जो हमने इन बातों को देखा है कि आज शायद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इन बातों को देखा है, क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, इन प्रतिज्ञाओं के भीतर, इन वाचा के भीतर माता पिता का उत्तरदायित्व है। मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको ऐसे माता पिता बना दे कि आपके बच्चे ठीक रीति से आगे बढ़ सके। एक समय आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, अपनी तरह चलते हैं, वो समय अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर उन बच्चों को बचपन से वे प्रभु में हैं, प्रभु में आ गए, वो आगे चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जब वो अपना परिवार बनाते हैं, जरूर वो उनको स्वतंत्रता है, वो परमेश्वर के भय में उस परिवार को लेकर चल, उनके ऊपर वही जिम्मेदारी आ जाए। अब उनकी जिम्मेदारी है कि अब वो अपने बच्चों को लेकर किस रीति से परमेश्वर के भय में बढ़ाए, उनकी जिम्मेदारी। फिर कल उनके बच्चे बड़े होंगे, उनके ऊपर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही ये आशीष उत्पत्ति उसकी पहले जाएगी जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बना के उनको लाके खड़ा किया तो कहा, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि फूले फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि इस कलीसिया के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देख सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, और मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन में होकर के, परमेश्वर में होकर और अधिक दृढ़ हो सके, ताकि एक दिन जब वो आएगा हम उसके साथ उस बादलों पर उठाए जाने के तैयार हो सके। ये सबसे बड़ी आज, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने कलीसिया को रखा है कि कलीसिया की सहभागिता में आए, आने वाले संडे में हम दो तीन बातों को और देखेंगे जो प्रभु भोज है और प्रभु बपतिस्मा और प्रभु भोज है। ये इस वाचा का भाग है, इस वाचा का भाग है और उसको भी हमें समझना है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब आप कलीसिया में रहते कितना अच्छा हो, जैसे धन्यवाद देने का अवसर मिले वो एक के बाद लोग परमेश्वर का धन्यवाद, क्यों हमारे मुंह बंद हो जाते हैं? क्या परमेश्वर ने आशीष नहीं दी? क्या परमेश्वर ने भलाई उत्पन्न नहीं करी? क्या परमेश्वर ने आपकी सहायता नहीं करी? फिर क्यों? कितना अच्छा हो कि मुंह खोलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। और कलीसिया में इस धन्यवाद की आराधना के बिल्कुल ऐसी आवाज गूंज सके कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके, हमारा जीवन प्रभु के प्रति और अधिक समर्पित हो सके और तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे के दुख सुख में हम संभागे। केवल अपने ही हित की चिंता मत करो कि लोग केवल मुझे ही देखें, मुझे देखें, मुझे दूसरों को भी देखना है, मुझे दूसरों की भी सहायता करनी है। अगर इस कलीसिया को आप कल आगे लेके जाना चाहते मेरे प्रियो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथों में जिम्मेदारी। लुक चिन्ह करना आसान है, दोष लगाना आसान है, इधर उधर भटकना आसान है, लेकिन कलीसिया को संभल के चलना और मजबूत करना ही कठिन। और कलीसिया में ऐसे खंभे चाहिए जो कलीसिया को मजबूत कर सके, विश्वास कर सके, भरोसा रख सके, दृढ़ हो सके, जान सके, और वो प्रेम जो प्रेम सच्चा प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की अगुवाई में देते हैं, वो प्रेम एक दूसरे को प्रज्वलित कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, और तब परमेश्वर के नाम पर, तब परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम संसार से अपने आप को और अधिक कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है, वो वचन, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है और वो अंश अंश कर करके मुझे और आपको मसीह के स्वरूप में बदलता जा रहा है। ये कितनी बड़ी आशा मेरा और आपके लिए। हम प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के लोगों की सलाहें, परमेश्वर के कलीस या परिवार साथ मिलकर मेरे और आपकी मदद कर रहा है। आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, हम एक दूसरे मदद कर रहे हैं। क्या मत करें कि अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में समानता में बदलते जा रहे हैं। जब एक दिन आएगा तब उसके साथ राज करेंगे, कितना सुंदर वो समय होगा। सो परमेश्वर सहायता करें कि हम इस वचन के अनुसार, तो आज हमने एक वाचक को देखा जिसमें 5-6 बात, प्रभु चाहे अगले इतवार को हम 2-3 वाचकों को और देखेंगे और हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।